विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसराइल की दरिंदगी के बारे में। ज़ायनी शासन दरअसल हिंसा, दरिंदगी, बर्बरता, हत्या और कत्ले आम का पर्याय बन चुका है। गजा के मामदानी अल अहली अस्पताल पर ज़ायनी सेना के भयानक हमले ने जो हालात पैदा कर दिए, उससे हर दिल रखने वाला इंसान हिल कर रह गया कि इतनी विभत्स दरिंदगी की क्या इतनी पस्ती में भी कोई गिर सकता है।
والصوت الذي يسمع ايضا يا الله صاروخ الخبيثه استهدفت المستشفى وسط المستشفى الذي يلتجئ اليه المئات والمئات من
अस्पताल पर हमले के बाद कोहरा मच गया। 500 से अधिक लोग अकेले इस हमले में तत्काल शहीद हो गए और इसके बाद भी शहीदों की संख्या लगातार बढ़ती रही।
ما يحدث في غزه هو عباده جماعيه بحق الناس بحق الاطفال بحق الكبار اكبر درجات الاجرام الان اسرائيل تقوم بارتكابها في قطاع غزه।
हमले के बाद सारी दुनिया में ज़ायनी शासन के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में नई शिद्दत आ गई। इसराइल ने ये हमला 17 अक्टूबर को किया। इसके बाद रात के समय दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर पड़े। ये प्रदर्शन बाद में भी जारी रहे।
اليوم بفلسطين عم بصير في إبادة، اليوم إسرائيل عم تعمل جرائم بعيدا عن القانون الدولي، جرائم
قضية الفلسطينية لم ولن تنتهي أبدا।
इस हमले पर दुनिया हिलकर रह गई, यहां तक कि इसराइल के कट्टर समर्थकों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ज़ायनी शासन ने अस्पताल को निशाना बनाकर अभूतपूर्व गलती कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा कि अस्पताल पर हमले को कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती, आम नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। इतने बड़े पैमाने पर निंदा होने लगी तो इसराइल ने हमेशा की तरह एक बार फिर डिनायल मोड अपना लिया और हमले के बारे में शक पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर न तो इसराइल का झूठ नया है और न अस्पतालों और आम लोगों पर इसराइल के हमले कोई नई बात है। भारत के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार सिद्धार्थ वरदराजन ने अस्पताल पर इसराइल के हमले के बाद और हमले से इनकार के मद्देनज़र पूरा जायज़ा पेश किया कि इसराइल इन्हीं दिनों अस्पतालों पर हमले करता रहा है और इन हमलों की कई स्वतंत्र सूत्रों से पुष्टि भी हो चुकी है।
देखिए, इसराइल की जो मिलिट्री है, अक्टूबर 12 की रात को उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी फिलिस्तीन में, गजा में जो फिलिस्तीनी लोग हैं, कि आप तमाम लोग उत्तरी गजा के का जो इलाका है वहाँ से आप फौरी तौर पे निकल जाएं। 24 घंटे का उनको डेडलाइन दिया गया और इसमें अस्पतालों के लिए कोई छूट नहीं था, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान आया अगले दिन कि गजा पट्टी के जो 22 उत्तरी गजा पट्टी के जो 22 अस्पताल हैं इनको अगर खाली कराया जाएगा तो ये बहुत बड़ा जो है वॉर क्राइम होगा, ह्यूमन कैटास्ट्रफी होगी। वहाँ पेशेंट्स हैं जिनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा WHO ने कहा, जो UN की एजेंसी है, कि अस्पतालों के कंपाउंड में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे शरण ले रखा है क्योंकि बमबारी इतनी हो रही है और उनको लग रहा है कि हो सकता है कि अस्पताल के परिसर में हम लोग सुरक्षित होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसराइल ने अस्पतालों को धमकी दी। और ये बकायदा रिपोर्ट भी हुआ, इसी अस्पताल पे एक इजरायली रॉकेट गिरा जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। और इसकी पुष्टि जो है एंग्लिकन चर्च के जो हेड हैं, जो यूके में जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं, क्योंकि ये अस्पताल बैप्टिस्ट एंग्लिकन हॉस्पिटल है, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया 16 तारीख को, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल पे हमला हुआ है 14 तारीख को। तो आप खुद समझ लीजिए कि जब और हस्पतालों को पहले भी निशाना बनाया गया है, ऐसा नहीं कि इसराइल हस्पताल या स्कूल को निशाना नहीं बनाता। इसराइल की जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद कहते हैं कि भाई ये हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इंसान नहीं जानवर है। और इसराइल के सदर जो है हर्ट्सॉग, उनका भी बयान आया कि इसराइल गाजा पट्टी के तमाम जो शहरी हैं इनमें से कोई बेकसूर नहीं माना जा सकता। तो ऐसे में जब खबर आई, और ये घटना घटी तकरीबन 7 बजे शाम लोकल टाइम, पैलेस्टीनियन टाइम या इजरायली टाइम, जो हिंदुस्तान में शायद 10-10:30 बजे के आसपास, और ये खबरें आने लगी अल जजीरा पे कि ये घटना घटी है। शुरू में बताया गया कि 80 लोग, 100 लोग, 200 लोग मरे हैं, और धीरे धीरे जो है खबरें 500 से ऊपर कैजुअलिटीज की आई। तो इसमें शॉक तो था ही कि भाई ऐसा एक घटना हुई, दुख भी हुआ, लेकिन सरप्राइज नहीं था क्योंकि इसराइल ये सब पहले कर चुका है।
इस तरह के हमले ज़ायन शासन के इतिहास में एक दो नहीं अनगिनत हैं। सबरा और शतीला, दैर यासीन, काना सहित अनगिनत इलाके हैं जो ज़ायनियों की दरिंदगी के साक्षी हैं।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोल कर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
फिलिस्तीन के हालात पर ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा खामेनेई का 17 अक्टूबर का बयान बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने बयान में कई अहम बातें कहीं। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि फिलिस्तीन के मामले में जो पूरी दुनिया की नज़रों के सामने है वो काबिज़ ज़ायनी सरकार के हाथों जातीय सफाए का जुर्म है। ये पूरी दुनिया देख रही है। ज़ायनियों को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। आज के काबिज़ ज़ायनी सरकार पर निश्चित तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
इन्हों बहुत मुहाकिमे पेश दौलत ग़ासिब रेजिम सहयूनिसी अमरूज कतअन बहुत मुहाकिमे पेश।
ये तो साफ जाहिर है कि ज़ायनी शासन ने भयानक रूप से युद्ध अपराध किए हैं और जानबूझकर अपराध किए हैं। पूरी योजना के तहत दरिंदगी की है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि गजा की इमारतों में फौजी तो नहीं रहते, फौजी अपनी जगहों पर रहते हैं, ये बात ज़ायनी भी जानते हैं। ये आम नागरिक हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों को चुनते हैं और वहाँ हमले करते हैं। अब तक गजा के कई हज़ार फिलिस्तीनी शहीद हो चुके इन्हीं कुछ दिनों में। ये जुर्म दुनिया के लोगों के आँखों के सामने है।
چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است.
पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार राशिद अहद कहते हैं कि हमास के अलक्सा ऑपरेशन के बाद ज़ायनी शासन पर जुनून और दीवानगी तारी हो गई है, वो दरिंदगी पर उतर आया है। ये बर्बरता इतनी भयानक है कि ज़ायनी शासन को खात्मे की तरफ ले जाएगी।
इसराइल इस वक्त तूफान अलक्सा ऑपरेशन के नतीजे में बिल्कुल दीवाना सा हो गया है, और जो सही लफ्ज जो यही है कि वो बिल्कुल दीवानगी को उस पर मुसल्लत हो गई है, और वो किसी मेयार पर नहीं है बल्कि सिर्फ एक जंगली हैवानी एक इकदाम पर उतरा हुआ है। तो ये जो बर्बरियत का जो इकदाम किया है वो बहुत ही यानी ऐसा इकदाम है जो इसको फाइनल कोलैप्स की तरफ ले जा सकता है, फाइनल कोलैप्स की तरफ। इसके नतीजे में एक जंग फैल सकती है, और मुझे यही लगता है कि ये नेतन्याहू खुद पूरे यानी वार सिनेरियो क्रिएट कर रहा है और इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जा रहा है, जहां पे वापसी की कोई उम्मीद नहीं। फिर जो है मुख्तलिफ यानी मुस्लिम ममालिक मुख्तलिफ जो भी ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका के और इसराइल के डसे हुए हैं, वो बिल आखिर इसमें उनकी शमूलियत जरूरी हो जाएगी और उनको करना पड़ेगा।
अयतुल्लाह खामनेई ने अपने भाषण में बड़ी अहम बात यह कही कि इस समय इसराइल दरअसल अमरीकियों की नीतियों के अनुसार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सी सूचनाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि इन दिनों जो नीतियां चल रही हैं यानी हालिया हफ्ते में ज़ायनी सरकार के भीतर जो नीति चल रही है उसे अमरीकी तय कर रहे हैं। मतलब ये कि पॉलिसी मेकर वो हैं और जो ये काम हो रहे हैं वो अमरीकियों की नीतियों के तहत हैं। अमरीकी अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें, वो जवाब दें हैं।
तो अमरीका हम बहुत मसूलियत खुदश तो इन कज़िये बेशनसे।
इसके बाद आयतुल्ला खामनेई ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि अगर ये जुर्म जारी रहा तो मुसलमानों के सब्र का पैमाना छलक जाएगा, प्रतिरोध फोर्सेस का सब्र ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। ये बात जान लें, फिर कोई किसी से ये अपेक्षा न रखे कि फुला गिरोह को ये काम न करने दीजिए। जब उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाएगी तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा।
اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره۔
زیانی شاسن جب سے استتما آیا ہے اس نے پورے ریجن میں اشانتی پھیلا رکھی ہے۔ اس ابھیشپت گھٹا یعنی اسرائیل کی استھاپنا کے بعد سے پشمی ایشیا کے علاقے میں اشانتی کا دور جاری ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اب اور اسرائیل کی منمانی نہیں چل پائے گی۔ इलाके में ईरान के नेतृत्व में जो रेजिस्टेंस मोर्चा खड़ा हो गया है वो अब विस्तारवादी ताकतों को ये मौका नहीं देगा कि इलाके के राष्ट्रों के खिलाफ साजिश करें। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।